नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नरमी आपको बहुत सी मुश्किलात से बचाती है। जी, मुश्किलात तो आनी है, जिस्म को नरम छोड़ दीजिए। एक जापानी उस्ताद ने अपने तुलबा से कहा, झुकना यानी दरख्त के झुकने को झुकना दरख्त खिलाफ की मानिंद है, तो मुकाबला ना कर शाहे बलूत की मिसल। क्या पता चला कि दरख्त जो झुक जाते हैं ना, वो बच जाते हैं, और जो गर्दने खड़ी रखते हैं वो टूट जाते हैं। कभी आंधी आई हो ना, तो अगले दिन जाके देखें, बड़े दरख्त गिर के टूट चुके होते हैं, और छोटे छोटे वो जो पौधे होते हैं ना, वो झूम झाम के मस्ती करके दोबारा ठीक हो चुके होते हैं। हदीस में आता है कि मोमिन नरम पौधे की मानित होता है, इसे हवा दाएं बाएं झुकाए रखती है। हिकमत वाला आदमी चट्टान से नहीं टकराता, बल्कि चट्टान पर दाएं बाएं और ऊपर नीचे से आता जाता है। हदीस में है कि मोमिन इस सुधाए हुए ऊंट की मानित है, जिससे किसी चट्टान पर बिठा दिया जाए तो बैठ जाएगा। अल्लाह हमें इतना ही मुअद्दब बना दे, तो क्या बना, अपने अंदर नरमी लाइए, नरमी नरमी नरमी। हर चीज़ में तो नरमी अच्छी लगती है। आप देखिए कि यहाँ जो मोमिन को एक नरम पौधे से तशबीह दी गई, तो ये कैसे, ज़रा सा सोचिए। पहली बात है कि नरम मिजाज होता है, पुरखलूस होता है, सुलझू होता है, अमन पसंद होता है, मसलियत अंदेश होता है, और ज़माने से मुताबकत करता है, स्टबन नहीं होता, एक स्टोन नहीं बन के चुपता रहता लोगों को, और सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। आप देखिए, बी फ्लैक्सीबल विद इन लिमिट्स। कुछ लोग नेकी के खौल में इतने सख्त होते हैं कि उनके इर्द गिर्द वाले हर वक्त गिल्ट में रहेंगे, हम दुखी, हम रोज़ा नहीं रखते, हम दुखी, हम ये। देखिए लेवल्स हैं ना लोगों के। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम दे दिया नेकी का, दूसरे के लिए दुआ कीजिए। अब बाप और बेटा जो है भी अभी 4-5 साल का, क्या एक जितना वजन उठा सकते हैं, एक जितनी रफ्तार से भाग सकते हैं? तो हमेशा अपने अंदर सॉफ्टनेस लाइए। हाँ, जिस नरमी को कभी नहीं लेना, वो असूलों की नरमी है। गलत बात नहीं बर्दाश्त करनी, ठीक बातों में। कोई चलता जाए और 10 साल तक भी गलतियां करता जाए, आप उसकी उंगली थामे रखिए। लेकिन जहाँ कोई अमल ना करना चाहे, तो फिर तो अल्लाह के नबी को भी आपने देखा है कि वो किस तरीके से अपने साथियों का मुहासबा करते थे। अबू दरदा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स को नरम बर्ताव का कुछ हिस्सा मिल गया, इसे इसकी भलाई का हिस्सा भी मिल गया, और जो शख्स नरम बर्ताव के हिस्से से महरूम रहा, वो भलाई से भी महरूम रहा। ये तिरमिजी की रिवायत है 2013 नंबर की। तो बड़ी आसान बात थी, आसान होगी कब जब अमल करेंगे। क्या सीखा? नाकामी के खौफ से काम नहीं छोड़ना। उठिए, आप कर लेंगे, सर उठा के जिए। एक बुक पढ़ी थी हमने, एक टॉपिक था पूरा, आज भी ऐप पे मौजूद है बुक्स के अंडर, सर उठा के जियो। आप में से हर एक को फ़ायदा होगा जिसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है, जो अपने आप को अंडर प्रेशर समझते हैं ना। और बस वो हालात ऐसे होते हैं कि वाकई लोग कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके होते हैं। मतलब अगर एक से दो बार एक औरत का घर ना बसे, तो फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। लोग कहते हैं छोड़ें, इसका घर कहाँ बसना है। एक से दूसरी बार कोई बीमार हो जाए, लोग कहते हैं अब इसने तो सर्वाइव ही नहीं करना। तो ऐसा ना कीजिए, अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाकर काम कीजिए। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अफवाहों पर कान नहीं धरना, बल्कि तस्दीक करनी है, और नरमी को अपनाकर शख्सियत को पुरवकार बनाना है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि चीज़ों में नरम चीज़ें ही खूबसूरत होती हैं। कपड़ा नरम, जूता नरम, ब्लैंकेट नरम, खाना गोश्त गला हुआ, और सोन। अपने लिए सोचिए। और एक बात जो वाकई फिर अपने ही बड़ों से सुनी भी, वो कहते थे कि वो कंकर ना बनो जो कभी गलता ही नहीं है। सारी दाल का मज़ा किरकिरा हो जाता है उस कंकर के मुंह में आने से, जो इतना पका, इतनी दाल के बीच में रहा, लेकिन ये नहीं गला। तो अपने आप को कंकर ना बनाए, रोड़ा ना बनाए, कि दूसरे लोग फिर आपको चबा ना सके। और खुश रहने का एक और नुस्खा, जो फौत हुआ वो वापस नहीं आएगा, इस हकीकत को मान लीजिए। और अल्लाह ताला तो कहते हैं ना, सूरत हदीद में आता है, तुम फौत शुदा पर अफसोस ना करो। लिकई ला ता सवला मा फातकुम, आयत 23 है। इसी तरह डॉक्टर पॉल खड़े हुए और ज़मीन पर लस्सी का ग्लास डाल दिया, फिर बोले, गई लस्सी पर अफसोस ना करो। नहीं पीनी होगी तो गिरा दी, तो कहा अब गिर गई अब गम ना करो। अच्छा, कभी हमारी भी कैफियत होती है, फ्रिज खोली दूध का डब्बा गिर गया, अब गिर गया, अब रो रहे हैं, धो रहे हैं, और बच्चे को डांट रहे हैं और चले दूध तो गया, अब सफाई कौन करे। हो गई होने वाली बात, छोड़िए। एक कहावत है कि जो आपकी किस्मत में नहीं इसका पाना दुश्वार है। हज़रत आदम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप ऐसी चीज़ पर मुझे मलामत करते हैं जिसे अल्लाह ने मेरी पैदाइश से 40 साल पहले ही लिख दिया था। अब ये कहाँ थी रिवायत, हम एज इट इज़ पढ़ रहे हैं इसको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दलील से आदम मूसा पर गालिब आ गए। ये बात आपने 3 बार दोहराई, तो पता चला कि ये हदीस से हमें पहुंची बात। खुशबख्ती को अंदरून में ढूंढो, अतराफ में या बाहर नहीं, ये भी नोट कीजिएगा। लेकिन अंदर आपके अगर खुशबख्ती है तो बाहर खुद ही आ जाएगी। चाबी, चम्मच कहाँ ढूंढते हैं, ड्रॉ के अंदर के बाहर? इसी तरह खुशियाँ आपके अंदर होंगी। अंग्रेजी शायर है मिल्टन, उसने कहा, अक्ल अपनी जगह खुद जन्नत को जहन्नम और जहन्नम को जन्नत बना सकती है। जी, यानी जिसने खुश नहीं रहना वो जन्नत में जाकर भी ना रह सके, और सो ऑन। मुतबन्नी ने इस मज़मून को अदा किया, इल्म वाला अपनी अक्ल से नेमतों के बावजूद ना मुराद हो जाता है, जबकि जाहिल आदमी अपने जुहल में भी, मुराद ये कि जो ना मुरादी है उसमें खुश रहता है। यानी वो कहते हैं ना, अक्ल नहीं तो मौजा ही मौजा। ये था वो जुमला, अगर आप नहीं सुन सके समझ सके तो लिख लें। बहुत सोचने वाला बंदा ही हर वक्त दुखी रहता है, जैसे अल्लामा इकबाल थे कि जो देखा है मैंने वारों को दिखला दे, और खुदाया मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, इस तरह की चीज़ें। तो क्या सीखा, जो चला गया सो चला गया। देखिए, इंसान ही नहीं वापस आते, चीज़ें कहाँ आएंगी, इसलिए उनका गम ना कीजिए। और लिकई लाता सवला मा फातकुम, हदीद 23, जो तुमसे फौत हो गया इसका गम ना खाओ। तो सब्र क्या है, जो छिन गया या चला गया इस पे सब्र करें। अफसोस किस बात का, गम और एहसास ज़ियां से दो चार ना हो, ये होता है अफसोस, गम ही करते जा रहे हैं। और सुकून किस चीज़ में है, ये जान लीजिए कि जो किस्मत में नहीं इसे पाना मुमकिन नहीं है। सही मुस्लिम की ये रिवायत है 6742 की, जो आपको सुनाई गई, आदम और मूसा का मुबासा। बस इसमें एक ही कलाम आता है कि ये हुआ कब था, क्योंकि आदम और मूसा का दौर तो बहुत मुख्तलिफ था, तो हम इसको बस एज इट इज़ हदीस की बात समझ के कोट करते हैं। और जो डिटेल है वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से मूसा ने कहा था कि आप हमारे बाप हैं, आपने हमको महरूम किया और जन्नत से निकाला, मुरादा के दरख्त का फल खा लिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मूसा हैं, आपको अल्लाह ने अपने कलाम से ख़ास किया और तौरात आपके वास्ते अपने हाथ से लिखी गई, आप मुझको ताना देते हैं इस काम पर जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में मेरी पैदाइश से 40 बरस पहले लिख दिया था। तो इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम बहस में गालिब आए मूसा अलैहिस्सलाम पर, मुराद ये कि तकदीर के लिखे को मान लीजिए। अल्लामा इकबाल इस मौजू पे कहते हैं कि अबस है शिकवाए तकदीर यजदां, तो खुद तकदीर यजदां क्यों नहीं है। अब इसको आम तौर पे समझेंगे तो बड़े शुबे हैं, और अगर इसमें इस चीज़ को ले लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपका भी तो कुछ हिस्सा रखा है ना तकदीर के मामले में, तो बात बड़ी गहरी है। अगली बात लीजिए, ज़िंदगी रंज के लायक नहीं है, बड़ी कीमती है ये ज़िंदगी। आप इसको रंज में खो देंगे, गमों में खो देंगे, तो आपने इस ज़िंदगी की नेमत की कदर नहीं की। सेंट नेपोलियन ने कहा, अपनी ज़िंदगी में खुशी और शादमानी के 6 दिन भी मैं नहीं जानता। यानी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 6 दिन भी खुशी के नहीं गुजारे। इज़ इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलक ने कहा था कि ज़िंदगी में अपनी खुशी के दिन शुमार किए तो वो कुल 13 दिन निकले। अल्लाह अकबर, पूरी ज़िंदगी, 50-60 साल की ज़िंदगी में 13 दिन। इसका बाप अब्दुल मलक हाय हाय करता और कहता कि काश मैंने खिलाफत का बार ना लिया होता, यानी खिलाफत के बोझ ने मेरी ज़िंदगी से खुशी छीन ली। सईद बिन अल मुसैब फरमाते हैं, हम्द है अल्लाह की जिसने लोगों को हमारे पास आने पर मजबूर कर दिया। यानी इल्म की तलब में लोग इल्म वालों के पास आते हैं, हमें इनके पास जाने पर नहीं। यानी वो इस पर ही बड़े खुश हैं कि लोग मुझसे इल्म लेने आते हैं, मसले पूछने आते हैं, मसाइल पूछते हैं। तो याद रखिए, खुश रहने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इब्ने समाक वाइस थे, वह खलीफा हारून रशीद के पास आए। हारून को प्यास लगी थी, इसने घूंट पानी मांगा। इब्ने समाक बोले, मीरुल मोमिनीन, अगर आपको पानी का ये घूंट ना दिया जाए तो क्या आप निस बादशाहत देकर इसे ले लेंगे? हारून ने कहा हाँ, क्योंकि प्यास लगी है तो जान बचानी ज्यादा बड़ी चीज लगती है। जब इसे पी लिया तो बोले, अगर ये पानी जिस्म से निकलना बंद हो जाए तो क्या इसके खराज के लिए निस बादशाहत दे देंगे? कहने लगा हाँ। इब्ने स्माक ने फरमाया, तब ऐसी बादशाहत से क्या भलाई जिसकी कीमत पानी का एक घूंट भी ना हो, यानी जिसको लेने के लिए आधी बादशाहत दी तो जिसको जिस्म से निकलने के लिए आधी दे दी, तो फिर क्या मिलेगा, क्या फायदा ऐसी बादशाहत का? कहने लगा हाँ। इब्ने स्माक ने फरमाया, तब ऐसी बादशाहत से क्या भलाई जिसकी कीमत पानी का एक घूंट भी ना हो। दुनिया ईमान से खाली हो जाए तो ना इसकी कोई कीमत है, ना वजन ना मानी। यानी दुनिया को भी बंदा इंजॉय करता है तो ईमान की दौलत के साथ करता है। ईमान की दौलत ना हो तो दुनिया से भी कुछ ज्यादा लोग नहीं लेते। ये अलग बात है कि दूर से बड़ा पंप एंड शो दिखता है, लेकिन करीब से खुशी नहीं बल्कि डिप्रेशन और गम के साए छलकते हुए दिखते हैं। इसी तरह एमर्सन खुद एतमादी पर अपने एक ऐसे में लिखते हैं, सियासी कामयाबियों, उजरतों में इजाफा, मरज से शिफा या खुशगवार अय्याम तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन इसकी तस्दीक ना करना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी जात के अलावा कोई भी चीज़ तुम्हें इत्मीनान दे सकती हो। क्यों? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इर्जिला रब्बी की राधियत मर्दिया। ये जुमला अल्लाह ताला ने सूरत फजर की आखिरी आयतें 27-28 में जो बता दिया, तो इससे क्या पता चलता है कि नफ्स मुतमईना बनकर जीने वाले ही को इत्मीनान मिलता है। इसी तरह एक नावल निगार फिलासफर है, एपेक्टोटिस, उसने कहा कि अपने जहन से गलत अफकार को खुरचने के लिए इससे ज्यादा इहतमाम करें जितना जिस्म से बीमारी और वर्म यानी सोजिश के इजाले के लिए करते हैं। जी, तो जहन से गंदी चीज़ें निकालेंगे ना तो सेहत मिलेगी इंशाल्लाह। क्या ये ताज्जुब खेस नहीं कि कुरान करीम जिस्मानी मरض से ज़्यादा फिक्र और अकीदे की बीमारी पर तवज्जो देता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, इनके दिलों में मरज है, फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। अल्लाह ने इनके मरज में इजाफा कर दिया, इनके झूठ के बदले इनके लिए अजाब अलीम है, सूरह बकरा 10 है। जब वो मुजस्सम हो गए तो अल्लाह ने इनके दिलों में और टेढ़ पैदा कर दी। इसी तरह फ्रेंच फिलासफर मॉन्टेन, उसने चंद कलेमात को अपनी ज़िंदगी का शोर बना लिया था, और वो क्या थे? किसी हादसे का आदमी पर इतना असर नहीं पड़ता जितना इस हादसे पर बनी इसकी राय से पड़ता है। यानी बड़े से बड़ा हादसा हो जाए ना, ख़त्म, राय जनी ना करो, तबसरे बहसें, इधर रिश्ता ना करते, वो ना होते, ये ना होते। जो लोग तबसरे नहीं करते ना, थोड़े दिन बाद उनको भूल भी जाता है चोट भी लगी थी। मैं इसको बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ से महसूस कराना चाहती हूँ। आप देखिए, जख्म हो जाता है, राह जाते भी कंकर चुभता है, पत्थर चलता है, चलता है। छोड़ दीजिए उसके हाल पे, चंद दिन बाद खरीद आएगा तो उतर जाएगा। बास लोग जख्म पे पट्टी, बैंडेज, खुरचा, खर्ची और उसके पर टांके लगते लगाते कई ऐसी एक्स्ट्रा केयर के नाम पे चीज़ें करते हैं, वो ज़्यादा देर से जाता है। आपके चेहरे पे एक पिंपल आए, उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पे, चंद दिन के बाद वो अपनी ज़िंदगी पूरी करके जाएगा। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका दाग भी ख़त्म होगा, और जिस पिंपल को आप छेड़खानी करने लगते हैं वो आपका दोस्त बन जाता है, फिर आपका साथ नहीं छोड़ता। तो लिखिए इस जुमले को कि ज़िंदगी में पेश आइंद हादसात पे राज़ी रहिए और तबसरे ना करें, क्यों टूटा, ऐसे हुआ, और रिश्ते हुए टूटे ख़त्म, चंद दिन दोनों खामोश रहें, अगले की खुशी गम के मौके पे भाई बहन मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। हम तो तबसरे कर चुके होते हैं, वो तबसरे हमें वापस नहीं आने देते। शौहर बीवी का घर कच्चा हो रहा है, टूट रहा है, बातें ना की होंगी, कुछ अरसे बाद दोनों की अकल ठिकाने आएगी, मिल जाएंगे, ये बातें नहीं घर बसाने देती। और हदीस में आता है, आप फरमाया करते थे, अल्लाह मुझे राज़ी बकज़ा बना दे ताकि मुझे मालूम हो जाए कि जो मुझे पहुंचा वो चूकने वाला ना था। यानी ये हो नहीं सकता था कि वो मुझे ना पहुंचे, और जो चूक गया वो मुझे पहुंचने वाला नहीं था। यानी जो तीर निशाने पे लगना था वो लग के रहेगा, और जो नहीं लगना वो नहीं लगेगा। तो फिर इससे क्या सीखा आपने? मैंने अपने लिए अमल लिया कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, अनमोल है, वक्त का पहिया पीछे कभी नहीं घूमता, तो इसमें रंज करके इसको ज़ाया ना करें। लेकिन आपके पास थोड़े से पैसे हों, कोई भी बड़ी से बड़ी करेंसी ले लीजिए, दीनार मसलन, आपके पास 2 दीनार हैं, कैसे यूज़ करेंगे? ऐसे ही बेकार कि उसको सींद सींद के रखेंगे? तो इतनी कीमती ज़िंदगी सिर्फ आपने रो धो के गुजारनी है? तो फिर खुद से कहिए कि जब दुनिया की ज़िंदगी सफ़र है और आखरत अब्दी आरामगाह है, दुनिया आरजी आखरत हकीकी, दुनिया थोड़ी आखरत बेहिसाब, दुनिया चंद साला उम्र और आखरत ना ख़त्म होने वाली, और दुनिया तो कभी खुशी कभी गम, तो आखरत में ना रंजो अलम बल्कि हमेशा का सुकून और राहत, तो फिर रंज कैसा? थोड़े के लिए मैं रोऊं और आला को और ज़्यादा को छोड़ दूं? और वो कहते ना कि खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं, तो तिल कल याम नुदाविलु हबीन नास। ये तो दिन है जो बदलते रहते हैं, कभी की रातें लंबी कभी के दिन लंबे। फिर इसी तरह आप देखिए कि सूरह बकरा की जो आयत 10 देखी कि फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो इसको पढ़ने के बाद भी बात समझ आती है कि मुनाफिक के दिल में मरज होता है, बीमारी। क्या मरज, किसकी बीमारी? फिक्र और अकीदे के बिगाड़ की बीमारी, रूह की कमज़ोरी की बीमारी होती है, हुब्बे दुनिया का मरज होता है। सोन तशखीस कैसे होगी? अल्लाह पर तवक्कुल और इल्म आखरत की कमी को देखकर, यानी जिसमें तवक्कुल बिल्ला कम होगा, आखरत का इल्म कम होगा, मान लीजिए कि उसमें ये मरज़ होगा। ऐसे लोगों का इलाज कैसे किया जाए? उनको अल्लाह की मार्फत दीजिए, सोच की तब्दीली का सफ़र शुरू कीजिए। अब रह गई बात आपकी मेरी ज़िंदगी। आप चाहते हैं कि हम मुतमईन रहें, तो नंबर एक मुस्बत सोच लाइए, कौल से खैर निकालिए, गलत चीज़ें मुँह से मत निकालिए, और फेल से खैर बने, यानी आपके कॉल दूसरों को खैर पे डालने वाले, आपके अफाल खैर वाले, और माल से भी खैर के काम कीजिए, यानी अपने अकवाल, अपने अफाल और अपने माल को खैर के रास्तों में खपा दीजिए, अल्लाह ताला आपको मुतमईन कर देगा। चलिए छोटा सा खुलासा करें, एक गैप लीजिए मज़ीद और सीखने से पहले, पिछली चीज़ों पे गौर व फिक्र करते हुए। क्या सीखा अभी तक? हुज़न में मुब्तला नहीं होना, क्योंकि हुज़न माजी की याद से गमज़दा और मुस्तकबिल से खौफज़दा रखेगा, आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। हुज़न में मुब्तला ना होंगे ताकि हुज़न से दिल परेशान ना हो, दिल धक धक करता है ना, उससे बच जाएंगे। और गम में होंगे तो चेहरा तुर्श होगा, कड़वा होगा, खट्टा, अबासा की कैफियत। इसी तरह से रूह बुझ जाएगी और उम्मीद ख़त्म हो जाएगी, दिल गरिफ्ता ना हो कि आपके हुजन से दुश्मन खुश होगा। ये भी नोट कीजिए, आप जितने दुखी होंगे ना, आपके मुखालिफ उतने खुश होंगे। बगले में जाते थे मदीना के वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह के नबी के लिए दुश्मनी थी, कब? जब आप परेशान होते या इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचता। तो अपने दुख भी हर एक के साथ ना शेयर किया करें, बीमारियां भी ना करें। दोस्त को गुस्सा आएगा, हासिद की बाछें खिल जाएंगी, और हकायक आपके लिए बदल कर रह जाएंगे। यानी गम करने से अगर कुछ मिल जाता ना, तो बंदा ज़रूर ही ले लेता। जो लोग इस तरीके की चीज़ों पे अपने आप को मुतमईन रखते हैं कि जो होगा देखी जाएगी, ये वो, फिर याद रखिए कि वो कभी भी खैर का हिस्सा नहीं पाते। और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना कीजिए, बड़ी कीमती चीज़ है ये ज़िंदगी। फिर इसी तरह से गम कज़ा से टकराने, मुकद्दर से लड़ने और इंसानियत से बगावत और नेमत पर नाराज़गी का दूसरा नाम है। गम ना करें कि गम से खोया गया हाथ नहीं आता, मुर्दा जिंदा नहीं होता, तकदीर पलटती नहीं और कोई फ़ायदा नहीं होता। गमज़दा ना रहें कि गम शैतान की तरफ से होता है, ये मुस्तकिल मायूसी का नाम है, इसी से गरीबी और मायूसी दायमी रहती है, इससे बिलयकीन नाकामी और बदतरीन शिकस्त मिलती है। और अल्लाह तो अपने प्यारे नबी को कहते हैं, अलम नशरह लक सदरक ववदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनकद ज़हरक, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया, आपका बोझ हटा नहीं दिया, जिसने कमर तोड़ दी थी और आपका जिक्र बुलंद कर दिया। फाइन्ना माल उसरी युसरा, बस उसर के साथ युसर है, तंगी के बाद आसानी है, तो करें क्या? फ़ैज़ा फ़रख तफन सब, फिर जब आप फारिग हो जाएं तो खड़े हो जाएं और इला रब्बी का फरगब, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। सूरत शर्ख की ये आयात आपका मेरा सीना खोलने के लिए काफ़ी हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान को इतने सदमे और इतने गम आए तो आपके मेरे लिए तो क्या नहीं हो सकता। तो लिहाजा गम न कीजिए। क्या सीखा? माजी का गम और मुस्तकबिल का खौफ नहीं करना। गम आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देगा, और तकदीर से लड़ना या टकराना बेवकूफ़ी है। और गम से मुर्दा जिंदा नहीं होता, तो फ़ायदा क्या गम करने का। और सबसे बड़ी बात है कि गम करके अपने दुश्मनों को खुश ना कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको मुझे जो ज़िंदगी दी है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और अगली टिप लीजिए कि अल्लाह पर ईमान के साथ हुज़्न जमा नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा इसको वाज़े कर दूँ कि ईमान की कमज़ोरी का राज खुल जाएगा आपको हुज़्न में देखकर। दूसरी फिर लफ्ज़ों में कह ली कि जहाँ अल्लाह पर पुख्ता ईमान होता है वहाँ गम नहीं रहता दिलों में। वाक़िया यह है कि ईमान इसी में खुए रज़ामंदी, तस्लीमो रज़ा और अमन व सुकून का राज है। इल्हाद और शक के साथ हैरत और बदबख्ती होती है। ये कहते हैं कि मैंने बहुत से ज़की यानी जीनियस लोगों बल्कि अबकरियों को देखा है। अबकरी कहते हैं बहुत ही अकलमंद। जो लोग ख़ुद को अबकरी कहते हैं ना, कह लीजिए कि वो खुशफहमियों का शिकार है। हज़रत उमर के लिए आता है ये लफ्ज़ अहदीस से, जो पता चलता है। तो बहरहाल कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़हीन लोगों को देखा है कि इनके दिल रिसालत के नूर से खाली थे, लिहाजा इनकी ज़ुबानें भी शरीयत से मुनहरिफ रहीं। यानी जितने मर्जी अक्लमंद लोग हो जाएं, अगर अल्लाह और उसके रसूल को नहीं पहचाने तो क्या फ़ायदा। अब देखिए दुनिया में इतने अक्लमंद लोग हैं, फिर भी अपने मनपसंद तरीक़ों से बेजान चीज़ों के सामने बैठे रहते हैं और अल्लाह की हस्ती को छोड़ देते हैं। इसी तरह अबुल आला शरीयत के बारे में कहता है, इसमें तनाक़ुस है नऊज़ुबिल्लाह, और हम इस पर खामोशी रह सकते हैं। इमाम राजी कहते हैं कि अकूल के इकदाम का अंजाम इनहराफ़ है। अकूल अक़ल को, यानी जो अक़ल के पीछे लगता है ना वो ज़रूर दीन से पीछे होगा। तो अल्लाह से अक़ल मांगिए तो अक़ल सलीम मांगिए। जमीनी को ये ना मालूम हो सका कि अल्लाह कहाँ है, ये अपने अपने दौर के लोग गुजर चुके जिनकी बातें इधर। वो कहता है कि मुझे हमदानी ने हैरत में डाल दिया। इब्ने सीना कहता है कि अक़ल फ़ाल ही कायनात में मौसर है। यानी अक़ल बड़ी होशियार होती है, इसको ज़रा सोच के इस्तेमाल करना चाहिए, ये मुराद है। ईलिया अबू माजी कहता है कि मैं आया लेकिन कहाँ से आया ये नहीं मालूम। मैंने सामने रास्ता देखा, इसी पर मैं चल पड़ा। यानी लोग कितना उलझे हुए हैं। कभी आप फ़िलासफ़ी पढ़ कर देखें, आपका दिमाग घूम जाता है। इसके बरक कुरान की एक आयत समझ के उठते हैं, दिल सीना मुनव्वर होता है। तो याद रखिए, एक फ़मा ज़बाद अल हक़ इल्ल दलाल, अल्लाह का ये जुमला बिल्कुल सच है। यानी ये वो नाम है जिनको लोग हीरो मानते हैं, बाबाए फुलां और बाबाए फुलां, लेकिन असल में ये बाबा बूबा भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। फिर इसी तरह से इस किस्म के बहुत सारे अकवाल हैं जिनमें बास हक के करीब हैं, बास बहुत दूर हैं। इनसे ये मालूम होता है कि बंदे का जैसा ईमान होगा इसी दर्जे की खुशबख्ती मिलेगी, और जिस दर्जे शक को हैरत का शिकार होगा इसी लिहाज से इसकी बदबख्ती भी होगी। बात के लोगों की गुमराहियाँ कदीम गुमराहियों से ही उधार ली होती हैं। यानी पहले शुरू वाले लोग गुमराह होते हैं, फिर बाद वाले भी होने लगते हैं। पुराने ज़माने में बदमुआश और मुजरिम फिरौन ने क्या कहा था? ना रब्बुकुम अलआला, मेरे अलावा तुम्हारा कोई रब नहीं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, ये नारे लगाए थे। ऐसे कितने ही कुफ्रियात हैं जिन्होंने दुनिया को बर्बाद कर दिया। एक किताब जिसका नाम क्या, इंसान सोचता है, मैन थिंक्स, इसके लिखने वाले जेम्स एलिन थे। वो कहते हैं कि जल्द इंसान तहकीक कर लेगा कि जब भी वो दूसरे इंसानों और अशिया के बारे में अपनी सोच बदलेगा तो वह अशिया और अशखास भी बदल जाएंगे। किसी आदमी को लीजिए जो अपने ख्यालात बदल ले, नहायत हैरत अंगेज़ तरीके पर इसकी ज़िंदगी के अहवाल बदल जाएंगे। यानी मुक़दस आईने जो हमारे निशाने मुतय्यन करती हैं वो हमारे नफूस हैं। बातिल तसव्वुरात और इनकी तासीर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि तुमने गुमान कर लिया था कि रसूल और अहले ईमान अपने घर वालों की तरफ वापस लौट कर नहीं आएंगे। यानी जो तबूक पे गए हैं वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, वापस कैसे आ सकते इतने बड़े दुश्मन के हाथों से बच के। ये ख्याल तुम्हारे दिलों में मुजयन हो गया और तुम बुरे बुरे गुमान करने लगे तो तुम थे ही हलाक हो जाने वाले। ये अल्लाह के साथ जाहिलाना गुमान करते हैं, कहते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ है। कह दो कि सारा मामला अल्लाह के इख्तियार में है। यानी कुरान की आयतें बताती हैं कि ईमान ना हो तो बंदे के मुँह से ऐसी बातें निकलती हैं। जेम्स एलिन ये भी लिखता है कि इंसान जो कुछ भी अंजाम देता है वो इसके ख़ास अफकार का रास्त नतीजा होता है। इंसान फक्त अपनी अफकार कहते हैं थॉट्स को, फिकर सोच, इंसान फक्त अपने अफकार के ज़रिए ही बुलंद होता, कामयाब होता और अपने मकासद पूरे करता है। और अगर वो अपने फ़िक्र की इत्तबा ना करे तो बदकिस्मत और कमज़ोर रहेगा। फ़िक्र साहिब और अजीमत सादिका के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़िक्र साहिब कहते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग सोच को, पॉन्डरिंग की वो कैफियत जिसमें राय भी बड़ी सही हो, यानी साहिब और राय भी उर्दू में हम बोलते हैं। और अजीमत, सच्ची अजीमत मुराद के दी बेस्ट लेवल ऑफ दी फैसला, अज़म का दर्जा, भी पीछे भी गुजरा ये लफ्ज़। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अगर ये निकलना चाहते तो इसकी तैयारी करते, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके उठने को पसंद ही नहीं किया। जी, ये भी उन्हीं लोगों पे तनकीद है सूरत तौबा आयत 46 में, जो तबुक के सफ़र में पीछे रह गए और बाद में कहते हमें पता ही नहीं चला। देखिए, जो काम करना होता है क्या आप उसका टाइम नोट नहीं करते? और अगर आपकी लिस्ट में नहीं है ना कि ये काम मैंने रोज़ करना है, तो आप एक आध दिन करके भी छोड़ देंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला इनमें कोई खैर जानता तो ज़रूर इनको सुनवाता। जी, ये भी उन्हीं लोगों पे तबसरा है, सूरह अनफाल की आयत 23 है, कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को सताया था। और इनके दिलों की सच्चाई अल्लाह को मालूम हो गई तो इसने इन पर सकीनत नाजिल कर दी। तो क्या पता चला, अल्लाह ताला दिलों को पढ़ लेता है। खुलासा करते हैं इस सारी टिप का, कि ईमान जितना बढ़ेगा गम उतना घटेगा। क्यों? देखिए, गम अंधेरा है और इसके बरक्स ईमान नूर है, रोशनी है। इल्हाद और शक अंधेरों का नाम है। नूर ईमान से महरूम शख्स हसरत और बदबख्ती का शिकार होता है, और वो दुनियावी एतबार से कितने अक्लमंद क्यों ना हो, दुनिया में बड़े बड़े काम करते हैं लोग, इन्वेंट्रीज करते और इसी तरह एक्सपोजर्स हैं उनके बड़े, लेकिन अल्लाह को नहीं मानते, तो इसी की मिसाल है। इसके बरक्स अगर ईमान को देखें तो अमन और आश्ती, जहनी सुकून, बामकसद ज़िंदगी, और सबसे बढ़ के तस्लीम और रज़ा के मजमू का नाम ईमान है। ईमान खुशबख्ती है। सूरत अनफाल 29, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, यानी अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हें वो देगा जिससे तुम हक को बातिल से जुदा कर लो। और ईमान में कमी बदबख्ती की अलामत है। सूरत अनफाल ही क्या है 23, वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्माहुम। इस वक्त आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है इस आयत में, आपको अल्लाह सुनवा रहा है ना, तो आप में खैर है। जिसमें खैर नहीं होती अल्लाह उसको फिर सुनवाना भी छोड़ देता है। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर की खैर को बाहर ले आए। फिर आप देखिए कि अच्छी सोच रखेंगे अच्छे नतीजे होंगे। अच्छे अफकार का नतीजा क्या होता है? अच्छी सोच अच्छे अमाल में ढल जाएगी। फिर इंसान बुलंद मकासद के लिए जीता है और उसमें जिद्दोजहद की ताकत पैदा होती है, ज़िंदगी कामयाब और मुतमईन होती है, और ऐसे शख्स की माशरे में इज्जत और तकरीम होती है। और हदीस ले लीजिए ईमान और हुस्ने खुल्क पे, सही बुखारी 6018 में है, कि जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने मेहमान की इज्जत करे, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अच्छी बात जुबान से निकाले वरना खामोश रहे। तो आपने मैंने आज जो सीखा, अल्लाह ताला इसको हमारी ज़िंदगी के गमों दुखों तकलीफ़ों के इजाले का ज़रिया बनाए, हमें इस पे और गौर व फिक्र करके ज़िंदगी की खूबसूरत नेमत को बेहतरीन तरीके से गुजारने वाला बना दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।